ये आकाशवाणी है। अब आप आकर्षिता सिंह से समाचार सुनिए। भारत और साइप्रस ने आतंकवाद और हिंसक अतिवाद के सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की है। दोनों देशों ने शांति और स्थिरता को कम करने वाले आधुनिक खतरों का मुकाबला करने के लिए साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। निकोसिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडस के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद जारी संयुक्त घोषणा पत्र में इसकी घोषणा की गई। वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और निवेश सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत साइप्रस भागीदारी साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के शासन में दृढ़ता से निहित है। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए साइप्रस के निरंतर समर्थन का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया और यूरोप के संघर्षों पर भी चिंता व्यक्त की।
पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली ये मानवता की पुकार है।
प्रधानमंत्री ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साइप्रस के समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। दोनों पक्ष क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के महत्व पर सहमत हुए। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने आतंकवाद सहित कई मुद्दों पर नया तंत्र विकसित करने की घोषणा की।
आतंकवाद, ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी की रोकथाम के लिए हमारी एजेंसी के बीच रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। हम दोनों सहमत है कि हमारे आपसी व्यापार और निवेश में बहुत पोटेंशियल है।
इससे पहले साइप्रस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस गणराज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री साइप्रस की सफल यात्रा के बाद आज शाम कनाडा के लिए रवाना हो गए। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। गृह सचिव गोविंद मोहन ने बैठक की अध्यक्षता की। समिति 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो अलग से इस मामले की जांच कर रहा है। सरकार ने जनगणना कराने की अधिसूचना आज जारी कर दी। जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से कराई जाएगी। सरकार ने देश में 2000 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये प्रशिक्षण स्कूल देश के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में खोले जाएंगे और इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि देश में करीब 22 लाख चालकों की कमी है। ईरान इसराइल संघर्ष के 4th दिन आज दोनों देशों ने अपने सैन्य अभियान और तेज कर दिए। दोनों देशों में मरने वाले नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसराइल ने तेहरान में सटीक हवाई हमले में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स खुफिया संगठन के प्रमुख सहित 4 वरिष्ठ ईरानी खुफिया अधिकारियों को मार गिराने का दावा किया है। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ में कल मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, गांगेय पश्चिम बंगाल, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में भी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तेज वर्षा होने की संभावना है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 20 जून तक गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।